ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नये सर्वसाम्यम् परम पूजनीय देवादिदेव तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान जिनवाणी माता की जय आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की जय यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन दृषद स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादि संपत्ता वात्मनो व्यात्मतामता वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैः वदनारकम् छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते यौः कियद्दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गव्युतिम् क्रोशार्धे किंस सीदति ऋषिकजमनातङ्कम् दीर्घकालोपलालितम् नाकेनाकौ कसां सौख्यम् नाकेनाकौ कसामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा युद्वे जयन्त्येते भोगा रोगा इवापदि तथा और युद्वे जयन्ते। इसमें दूरी नहीं होनी चाहिए, दोनों एक साथ मिले हुए होने चाहिए। बीच में फासला कर दिया ना छपते छपने प्रेस में। तथा युद्वे जयन्ते एक साथ है। मोहेन संवृतं ज्ञानम् स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकोद्रवै वपुर्गृहं धनन्दाराः पुत्रामित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि स्वानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे विराधतः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यते व्यङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरञ्जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ विपद्भवपदावर्ते पदिकेवातिवाह्यते यावत्तावद्भवन्त्यन्याः प्रचुरा विपदः पुरः दुरर्जीनासुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामिव नीक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतरतरुस्तवत् आयुर्वतनि उन वनांतरतरुस्तवत् वत बस यहां आवाज रुक जानी चाहिए वत त नहीं बोलना उसको वत बस वनांतर तरुस्तवत् आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतु कालस्य निर्गमम् वांछतां धनिनामिष्टम् जीवितात् सुतरांधनम् त्यागाय श्रेयसे वित्त त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः संचिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन सास्यामीति विलिम्पति। ये श्लोक कठिन पढ़ रहे हैं। त्यागाय त्यागाय श्रेयसे और वित्त, अब इनको हिसाब से पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? तीन शब्द सिर्फ, त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः संचिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति। मीति ती को दीर्घ मत बोलिए, स्नास्यामीति विलिम्पति। नी को लंबा कर दोगे तो ती के लिए सांस नहीं बचेगी, तो सही उच्चारण होगा स्नास्यामीति विलिम्पति। कोई बात नहीं, अभी रोज पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे सीख जाओ। आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामं कः सेवते सुधी भवन्ति प्राप्य यत्संग मशुचीनि शुचीन्यपि सकायः संततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय एतज्जीवस्यापकारकम्। यहाँ तक पढ़ा था अपन ने, 19 काव्य हो गए हैं रविवार से लेकर गुरुवार तक। आज शुक्रवार है तो मंगलाचरण में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने परमात्मा को नमस्कार किया है। कैसे हैं परमात्मा? जिनको स्वयं अपने स्वभाव की प्राप्ति हुई, स्वयं यानी अपने ही भीतर से अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हुई, लेकिन उसके लिए निमित्त क्या बना? कृत्स्न कर्मणा अभावे, सब कर्मों का क्षय। कर्मों का क्षय करने पर आत्म स्वभाव की उपलब्धि हुई। आत्म स्वभाव की उपलब्धि बाहर से नहीं हुई, अंदर से हुई, और बाहर जो कर्म थे वो नष्ट हो गए। कर्मों का नाश निमित्त है और स्वभाव की उपलब्धि अपने आत्मा रूपी उपादान से होती है। तो आत्मा जिसको स्वभाव की उपलब्धि हुई है वही आत्मा परम आत्मा है, परमात्मा। तो संज्ञान रूप है, केवल ज्ञान स्वरूप जिनका है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार। फिर योग के उपादान के योग से, स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण निकल आता है, इसी प्रकार सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव, इन चार योग के सामग्रियों के मिलने पर आत्मा में सिद्ध दशा प्रकट होती है। अब सुद्रव्य आदि की व्याख्या तो आप सुन चुके हैं। सुद्रव्य यानी मनुष्य पर्याय का शरीर हो, जीव द्रव्य का, और उसमें वज्र, ऋषभ, नाराज, संगनन और साथ में, फिर सुक्षेत्र कर्म भूमि में जन्मा हुआ, फिर सुकाल जिस काल में तीर्थंकर आदि होते हैं, और फिर नाम की अपेक्षा से देखो तो सुषमा दुष्मा और दुष्मा सुषमा, बस इन्हीं दो कालों में जन्मे हुए का मोक्ष होता है। फिर इसके आगे तीसरे काव्य में कहा सुभाव, सुभाव रह गया था। सुभाव में क्या लेना? धर्म और शुक्ल ध्यान, और उसमें भी साक्षात मोक्ष का कारण क्या है? शुक्ल ध्यान। और धर्म ध्यान जो है परंपरा मोक्ष हेतु, परे मोक्ष हेतु, 9वें अध्याय में एक सूत्र है, परे यानी धर्म और शुक्ल, ये दो मोक्ष हेतु, मोक्ष के कारण है, लेकिन धर्म ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण नहीं है। धर्म ध्यान संवर निर्जरा में सहायक है, उसके बाद शुक्ल ध्यान जो है वो साक्षात मोक्ष का कारण। इसके बाद फिर प्रश्न आया कि अगर व्रत धारण कर ले और सब कुछ करने लग जाए, रत्नत्रय का पालन करने लग जाए और मोक्ष न हो तो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सब दीक्षा लेने वालों को मुक्ति मिल जाए। तो आचार्य कहते हैं कि तो भी अच्छा है, बेहतर है, बोले व्रतों के साथ सदगति में जाना पापों के साथ दुर्गति में जाने की अपेक्षा से ठीक है। और फिर दृष्टांत वही दे दिया धूप वाला, तीन मित्र धूप में शिखर जी की यात्रा करने निकले, एक पीछे रह गया, बाकी दो जो थे वो उसके प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं। तो एक पेड़ की छांव में बैठकर करता है इंतजार, और एक सीढ़ियों पर खड़े होकर धूप में इंतजार करता है, और धूप में इंतजार करने वाले के सिर पर भी बाल कम है, तो सब तरफ से मुश्किल, पसीना बहा रहा है बेचारा। तो उस प्रकार प्रतीक्षा करना ठीक नहीं है, और पेड़ की छांव में बैठकर प्रतीक्षा करना बेहतर है। इसी प्रकार अब मोक्ष तो जब मिलना है तब मिलेगा, लेकिन उसके पहले नरक जाना अच्छा या व्रत धारण करके देवगति में जाना अच्छा? ये था। फिर इसके बाद कहा कि भाई देवगति में जाते हैं व्रतों से, तो उसका मतलब ये मत समझ लेना कि देवगति बहुत अच्छी है या देवगति में ही हम संतुष्ट हो जाएं। अरे जिस आत्मा के प्रति लगाया हुआ रत्नत्रय भाव निर्वाण प्रदान कर सकता है, तो देवगति कौन सी बड़ी चीज है, तो उसका बहुमान मत करना। बहुमान और लक्ष्य तो अपने मोक्ष का ही रखना। देवगति में क्या होता है? तो अब आत्मा का जो भाव है वो देवगति में ले जा सकता है, मोक्ष भी ले जा सकता है। तो देवगति कोई बड़ी चीज नहीं है, जो मोक्ष ले जाए उसके सामने देवगति क्या वस्तु है? क्योंकि दृष्टांत ये दिया कि घट्टा घट्टा आदमी दो कोस तक बहुत आसानी से चला जाता है, तो फिर वो आधे कोस में वजन लेकर चला जाता है, तो आधे कोस में बिना वजन के क्या थकेगा, वो हाफेगा नहीं, बहुत आसानी से चला जाए। फिर देवगति में इंद्रिय जनित सुख होता है, आतंक रहित होता है, और दीर्घ काल तक दुलारा हुआ सुख प्राप्त होता है, और वो सुख स्वर्गों में जो देव रहते हैं उनको जो सुख प्राप्त है उन्हीं के समान, कोई दूसरी तुलना नहीं है। फिर इसके आगे कहा कि भाई जब इतना अच्छा सुख है तो फिर हम मोक्ष क्यों जाएं? तब तो फिर देव बनकर के आनंद लूटे संसार का। तो आचार्य कहते हैं कि देही नाम सुखम दुखम च वासना मात्र मेव। संसारी प्राणियों का यह जो सुख और दुख है ये केवल उनकी एक आदत पड़ी हुई है, इसलिए इनको सुख और दुख महसूस होता है, उसकी कल्पना करते हैं। वास्तव में संसार का सुख वास्तविक सुख नहीं है। और दृष्टांत दिया कि यही भोग जो सुख दे रहे थे विपत्ति आते ही साथ रोग के समान कष्टकारी हो जाते हैं। किसी के मरण का समाचार मिल जाए और आप उस समय आपके मुंह में मिठाई हो तो क्या स्थिति होती? वो मिठाई भी आकुलता का कारण बन जाती है कि अभी कहां से मैं मिठाई खा रहा था, ऐसे समाचार आ गए तो बहुत आकुलता होती है। इसी प्रकार दुख भी है, दुख भी जब तक अपना मोह है तब तक है, मोह छूट जाए तो न सुख है न दुख है। जैसे सुखमाल स्वामी को जब तक मोह था तब तक राई के दाने छुपते थे, और जब मोह तोड़ दिया उनने तो फिर शालिनी के दांत भी नहीं छुप रहे थे। तो ये सब पता क्यों नहीं चलता? सुख और दुख का रहस्य जब इतना स्पष्ट है तो फिर हमारे ज्ञान में क्यों नहीं बैठता, हमें विश्वास क्यों नहीं होता? तो आचार्य कहते हैं कि मोह से ढका हुआ ज्ञान होने के कारण वो वास्तविकता को नहीं पकड़ पाता। जैसे नशीले कोदों को खाने वाला मनुष्य, नशीले कोदों का वर्णन किया था हमने, दो महीने अगर बरसात न गिरे समय पर तो जो कोदों की फसल होती है वो कोदों की फसल नशा पैदा करती है, उसके जो दाने होते हैं उसका सेवन करने पर नशा आता है, और नशा आने के बाद फिर वो वास्तविकता को नहीं पहचानता। अब किसी से भी कुछ भी बोलता है, अपने नौकर से बोलता है कि कैसे हो साहब, बच्चे से बोलता है कि पिताजी कैसे, पत्नी से बोलता है कि मैंने देखा है तुमको कहीं, शायद कभी साथ में पढ़े हों अपन बचपन, ऐसा कुछ भी, किसी से भी कुछ भी बोलता जाता है, नशे में है। उसी प्रकार मोह का नशा अनादिकाल से जीव के ऊपर चढ़ा हुआ है, इसलिए सुख और दुख की वास्तविकता को नहीं पहचानता। ये नहीं समझ पाता कि सुख और दुख सिर्फ मेरी एक बुरी आदत है, मैं किसी में सुख मानता हूं किसी में दुख मानता हूं। वास्तव में क्या सुख है और क्या दुख है? संसार में सुख तो है ही नहीं वास्तविक दृष्टि से, तत्व दृष्टि से, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति को मनुष्य सुख मान लेता है। फिर उसके आगे कहा कि जो मोही प्राणी है वो शरीर को अपना रूप मानता है और घर धन स्त्रियां पुत्र मित्र और शत्रुओं को अपने घर अपना धन अपनी स्त्रियां अपने पुत्र अपने मित्र और अपने दुश्मन मान लेता है, जबकि इनके स्वभाव सब बिल्कुल भिन्न है। अपना जीव स्वभाव अलग है और इन सब का स्वभाव अलग है, तो सबसे एकदम अलग अलग स्वभाव वाले होकर के भी इनको अपना मान लेता है, ये कैसे हो सकता है? सत्य दृष्टि से तत्व दृष्टि से देखो तो भिन्न स्वभाव वाले कभी एक नहीं होते, अग्नि और पानी कभी एक नहीं हो सकते। फिर राग और द्वेष से कैसे बचा जाए? तो आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर उपाय बताया कि विभिन्न स्थानों से विभिन्न दिशाओं से शाम के समय दिन ढलते समय पंछी किसी एक बड़े वृक्ष का आश्रय लेकर रैन बसेरा करते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। उसमें कुछ तोतों का झुंड भी होता है, बगुलों का, कौओं का, अलग अलग पक्षियों के झुंड होते हैं, चिड़िया भी रहती है बहुत सारी, तो वो सब अपने अपने झुंड के साथ आकर उस पेड़ पर एक साथ रात्रि में विश्राम करते हैं। और जब अंधेरा चला जाता है, उड़ने योग्य उजाला हो जाता है, तो वे सारे पंछी अपने अपने कार्यवश अपनी अपनी दिशाओं में अलग अलग चले जाते हैं। निवास रात में एक जगह किया था लेकिन सबको अपने अपने ठिकाने पर जाना है, तो वो सब सूर्योदय के पहले अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं। इसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि बहुत सारे वृक्ष हैं, उन वृक्षों के समान मनुष्यों के बहुत सारे कुटुंब हैं, तो कुटुंब रूपी वृक्ष पर अथवा वृक्षों पर विभिन्न गतियों से अनेक प्रकार के कर्म बांध कर जो जीव मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए हैं वो जन्म धारण करते हैं। यानी एक एक कुटुंब में कई जीव मनुष्य पर्याय को प्राप्त होकर के जन्म लेते हैं और फिर कुछ समय तक विश्राम करके कुछ समय तक साथ में हिल मिल करके रहते हुए राग द्वेष भी करते हैं, मोह भी करते हैं, सब कुछ करके। जैसे वो पक्षी भी रात में जब रुकते हैं ना तो एक दूसरे को चोंच मारते हैं, अगर बाजू वाला ज्यादा पास आ जाए तो एक चोंच मारता है। तो वैसे यहां पर भी जो परस्पर में जो रिश्ते होते हैं या फिर कोई ऐसे संबंध होते हैं तो उन संबंधों में कभी कभी विवाद होता है, कभी कभी राग होता है। तो राग द्वेष में ये पूरी रात निकल जाती है। पूरा मनुष्य भव जो है एक रात के समान है और कुटुंब जो है वो एक वृक्ष के समान है और अपन सब जो है संसारी प्राणी जो मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए हैं, जो परिवार में रहने वाले हैं, वो सब पंछियों के समान है। वो सब एक साथ निवास करते हैं और सवेरे सवेरे जैसे वो पंछी अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं अपने अपने काम से, उसी प्रकार ये संसारी प्राणी जो मनुष्य पर्याय में आए थे वो अपने कर्म से अपनी अपनी गति में रवाना हो जाते हैं। तो राग किससे और द्वेष किससे, जिनेंद्र वर्णी जी ने ट्रेन के डब्बे का उदाहरण दिया था कि आप यहां से बैठे अहमदाबाद से और फिर वहां जा रहे हैं कलकत्ता तरफ, तो फिर जिस डब्बे में रिजर्वेशन कराकर आप बैठे हुए हैं उस डब्बे में और भी बहुत से मुसाफिर मिलते हैं। कई लोग बीच से चढ़ते हैं, कई लोग यहीं से साथ होते हैं, तो फिर उनके साथ कभी बातचीत भी होती है, कभी चाय नाश्ता होता है, कभी और भी कुछ सुख दुख की चर्चाएं हो जाती है, कभी जोक्स भी सुनाते हैं, कभी कोई दूसरे किस्से भी सुनाते हैं, वो गंभीर कुछ वार्ताएं करते हैं, कभी तत्व चर्चा भी करते हैं। एक रेल के डब्बे में जो दो दिन का सफर है उसमें कितनी सारी बातें हो जाती है, लेकिन जब उनका स्टेशन आ जाता है तब वो उतर जाते हैं, आप उनको अलविदा कह देते हैं, देखो कभी फिर मिलेंगे तो मिलेंगे इस प्रकार कह करके विदा कर देते हैं। आप आंसू नहीं बहाते, मूर्छित नहीं होते, क्यों? क्योंकि पहले से आपके अंदर यह विवेक है कि सबको अपने अपने ठिकाने पर जाना है। ट्रेन में यह विवेक है लेकिन यहां पर मनुष्य पर्याय में ये बात भूल जाते हैं कि सबको अपने समय पर अपनी गति में जाना है अपने कर्मों के कारण। इसलिए क्या राग करना, क्या द्वेष करना, ठीक है जब तक मिले हुए हैं तब तक हंसी खुशी से साथ में रह लो, दुश्मनी मत करो, अच्छे से हिल मिलकर प्रेम से रहो, और उसके बाद जब जाने की विदाई की बेला आएगी तब ठीक है, वैसे ही जैसे ट्रेन में विदा करते ना, ठीक है फिर मिलेंगे, ऐसे करके बहुत अच्छे मीठे टोन में बोलते हैं वो कि अच्छा हाँ जय जिनेंद्र, ऐसे बोल करके विदा कर देते हैं। तो इसी प्रकार यहां पर भी जब उनका समय आ जाता है दिन के निकलने का तो फिर वो भी विदा हो जाए, वो भी आकुलता ना करें और जो विदा करने वाले हैं वो भी ना करें। विदा होने वालों को भी आकुलता करने की आवश्यकता नहीं है और विदा करने वालों को भी आकुलता की आवश्यकता नहीं, लेकिन मोह ऐसा रहता है कि उसमें कुछ आंसू तो ले ही आते हैं आंखों में, पर फिर भी विवेकी मनुष्य को जिनवाणी का सहारा लेकर, अब देखो आकुलता हो रही है आंसू आते हैं तो बच्चा मां के ही पास जाता है, उसी प्रकार अगर अपने को आकुलता होती है तो अपन जिनवाणी मां के पास आकर के बोलते हैं कि माता कुछ बताओ, तो जिनवाणी मां बोलती है कुछ मेरा न तेरा चिड़िया रैन बसेरा, एकदम मन को राहत मिलती, शांति मिलती। अब जिसके प्रति द्वेष है उसका क्या करें, ये तो ठीक है राग वाली बात तो बता दी कि सब संयोग वियोग में ही है, भोग रोग में ही है, और आत्मा का जो उपयोग है वो अगर योग में ही हो जाए तो आत्मा का कल्याण हो जाए। ये शब्दों का भी एक इसमें अनुप्रास है, संयोग वियोग में है, भोग रोग में है, और उपयोग योग में हो जाए। योग का अर्थ ध्यान, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान। उपयोग का अर्थ क्या, चेतना की परिणति को उपयोग कहते हैं, जानना या देखना इस पर्याय को उपयोग कहते हैं। चेतना गुण है और उपयोग पर्याय है। तो आचार्य कहते हैं कि अगर किसी के प्रति द्वेष है तो फिर यह विचार करो कि वो मेरे लिए प्रतिकूल होगा तभी तो मैं द्वेष करता हूं, कहीं ना कहीं से मुझे नापसंद होगा तभी तो मुझे द्वेष, और वो मुझे नापसंद क्यों है, कई लोगों को पसंद भी है, एक ही व्यक्ति किसी को पसंद होता है किसी को नापसंद होता है, तो मुझे नापसंद क्यों है, या मेरे साथ उसका बर्ताव ऐसा प्रतिकूल क्यों है, तो फिर उस पर दृष्टि डालने से समझ में आता है कि मैंने कोई कर्म पहले बांधा था जिसका उदय ऐसे फल को प्रदान कर रहा है, यानी ये मेरा कर्म फल है जिसके कारण उसका बर्ताव मेरे साथ इस प्रकार है। तो अब ये विचार करने पर फिर ये समझ में आता है कि मेरा कर्म फल मुझे ऐसी आकुलता, ऐसा अनिष्ट संयोग क्यों प्रदान कर रहा है, तो उस कर्म की जाति पर दृष्टि डालो। कर्म की दो जातियां हैं, एक पुण्य और एक पाप, शुभ अशुभ। तो फिर ये जो अनिष्ट फल दे रहा है वो कौन सा कर्म है? अशुभ कर्म, पाप कर्म है। तो पाप कर्म मुझे अनिष्ट फल दे रहा है, इससे ये सिद्ध हुआ कि मैंने पाप किया, हुआ कि नहीं? और यदि मैंने पाप किया है तो उसका दंड मुझे मेरे पाप से मिल रहा है, फिर मैं इससे द्वेष क्यों करूं? समझदारी बात, बात बड़ी सुंदर है लेकिन करने में मुश्किल है, प्रयोग करना थोड़ा कठिन है। क्या पहली चीज क्या देखना अपने को, कि कोई अपने लिए अनिष्ट है, तो फिर यह विचार करना कि ये अनिष्ट संयोग मुझे क्यों, तो पता चलेगा कि जो कुछ भी होता है यहां इष्ट या अनिष्ट वो अपने कर्मों के फल से होता है। तो मेरे किस कर्म के फल से अनिष्ट संयोग है? पाप कर्म के। इसमें कोई शंका है? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट गणित है, दो और दो चार जैसा। तो मेरे पाप कर्म के फल स्वरूप ये अनिष्ट बना है, तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि मैंने पाप किया है, और अगर मैंने पाप किया है तो फिर उसका दंड निश्चित है। उस दिन भी हमने कहा था कि कभी किसी का मन हो कि मैं पाप कर लूं तो उसको उसी समय एक कायोत सर्ग करके साथ में एक और फैसला करना चाहिए। अगर उसने संकल्प किया कि मुझे पाप करना ही है तो पाप करने का संकल्प तो कर लिया, अब उसके साथ में कायोत सर्ग करके एक संकल्प और करना चाहिए कि इसका फल भी मैं ही भोगूंगा। ठीक है, क्योंकि पाप का फल, पाप करे अपन और फल किसी और को मिले, ऐसी व्यवस्था तो हो नहीं सकती। एक खेत में आपने अच्छे अच्छे अनाज बोए हैं तो फिर वो पड़ोसी के खेत में उसका दाना कैसे उगेगा, वो तो अपने खेत में लगेगा। या फिर उसने अगर अच्छे दाने बोए हैं तो फिर अपने खेत में कहां से आएंगे, उसका उसकी फसल अपने खेत में कहां से आएगी? तो अपने कर्म का फल अपने को ही भोगना पड़ता है। तो मैंने पाप किया ये सिद्ध हुआ। अगर आज मेरे लिए कोई प्रतिकूल है तो ये सिद्ध हो जाता है कि मैंने पाप किया है, और अगर मैंने पाप किया है तो मुझे अपने पाप का दंड मिल रहा है, और मेरे ही पाप का ये फल है, तो फिर उसके प्रति मैं द्वेष क्यों करूं? तो उसके लिए दृष्टांत दे दिया, वो तीन कांटों वाला एक फावड़े जैसा एक यंत्र होता है ना, जिससे कचरा समेटा जाता है, भूसा वगैरह गांव में। अब तो और कांटों वाले भी आने लग गए, लेकिन पहले पुराने उस, ये तो बहुत पुराना ग्रंथ है, 1500 वर्ष पुराना ग्रंथ है, तो इसमें ये तीन कांटों वाला जो यंत्र होता है वो अगर ऐसे खड़ा हो धरती पर, डंडा ऊपर की तरफ और फिर ऐसे कांटे ऐसे टिके हुए हो, और कोई सोचे कि मैं इसको गिरा दूं और गिराऊं, तो हाथ लगाए बिना गिराऊं, पैर से गिराऊं, एक पैर से नहीं दोनों पैरों से गिराऊं, तो कैसे गिराएगा दोनों पैरों से? तो दोनों पैरों से गिराने के लिए ये जो कांटे थोड़े से ऊपर रहते हैं, जब सामने की तरफ ऐसे थोड़े बेंट रहते हैं, तो इस पर पैर रख करके अगर वो गिराता है दोनों पैरों से, तो फिर ये जो डंडा है उसके द्वारा वो गिरा दिया जाता है। इसी प्रकार पाप अपन ने किया तो फिर कोई भी निमित्त आकर के अपने को दंड दे सकता है, उस निमित्त, अब वो अगर डंडे से नाराज हो जाए, फिर गिरने के बाद उठ करके उस डंडे को ही काट के फेंक दे, तो फिर मूर्खता है ना। इसी प्रकार अगर अपने कर्म के उदय से कोई अपने लिए अहितकारी बन गया, अनिष्ट बन गया, अपन उससे दुश्मनी करते तो फिर नए कर्मों का बंद होगा, फिर इसका दंड आगे और मिलेगा। तो इस समय अपना कर्तव्य यह है कि जो भी अपने लिए अहितकारी है, शत्रु है, द्वेष का कारण है, उस पर ध्यान न केंद्रित करके अपनी कर्म निर्जरा पर ध्यान देना चाहिए। राग द्वेष रूपी लंबी युगल रस्सियों की खींचातानी द्वारा यह संसारी जीव मथानी के समान संसार सागर में चिरकाल तक भ्रमण करता है। जिसके अंदर मोह है वो मथानी दो रस्सियों से ऐसे ऐसे खींची जाती है। अभी भी गांवों में कहीं कहीं पर वो व्यवस्था है, एक बड़ी लंबी मटकी रहती है और उसके अंदर वो मथानी बीच में फंसी रहती है और उसमें दो रस्सियां लगी रहती है, उसको ऐसे ऐसे खींचते हैं और फिर वो अंदर से मक्खन निकलता है। लेकिन संसार सागर में क्या होता है कि राग और द्वेष रूपी जो दो युगल रस्सियां, लंबी लंबी रस्सियां हैं, उनकी खींचातानी से कुछ होता नहीं। वो जीव रूपी जो मथानी है वो घूमते रहती है संसार सागर में, पर उसमें मक्खन नहीं निकलता, केवल आकुलता ही निकलती है। माने सुख रूपी मक्खन तो नहीं मिलता, लेकिन दुख रूपी वो आकुलता रूपी मक्खन निकलता रहता है। और देखिए आकुलता कितनी है संसार में। तो आचार्य महाराज ने एक और दृष्टांत दिया कि जैसे कुएं से पानी खींचने के लिए पहले जो रहट का इस्तेमाल होता था, तो उसमें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये सब क्रम से खाली करते जाओ, पानी भरता जाता था नीचे और यहां ऊपर से आप निकालते जाओ, तो उधर से निकालो तो नीचे भर जाता है दूसरा, फिर निकालो तो फिर वो भर जाता है तीसरा, ऐसा करते जाओ तो कभी वो पूरा खाली होता ही नहीं, निरंतर उसमें पानी भरता ही रहता है। इसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि एक विपत्ति टलती है तो दूसरी और सामने खड़ी हो जाती है, फिर वो जाती है तो और खड़ी हो जाती है, लाइन लगी रहती है विपत्तियों की। संसार विपत्ति में है। फिर इसके बाद कोई मन में विचार कर सकता है कि नहीं, जो पैसे वाले लोग हैं उनका कहां जीवन दुखी है, उनको कहां विपत्ति हो, तो मजे में जी रहे हैं, तो कितनी बढ़िया बढ़िया गाड़ी में आते हैं, परिवार के साथ आते हैं और कितने बढ़िया कपड़े पहनते, सारी बातें वो जो उसकी बुद्धि में आई है, वो जो कुछ देख रहा है और जिसको सुख मान रहा है, वो सोचता है कि देखो कितने सुखी हैं। और फिर कभी कभी जो लोग धन दौलत वाले होते हैं वो भी ऐसा सोच लेते हैं कि हम बड़े सुखी हैं, बाकी लोग कहां सुखी हैं, हम तो बड़े सुखी हैं, ऐसा मानते। आचार्य कहते हैं कि ये भी एक भ्रम है, क्योंकि पैसे की कमाई बड़ी कठिनाई से होती है। सपने में किसी देवता ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम्हारे तके के नीचे से करोड़ों का वैभव निकलेगा, तो ऐसा कभी हुआ नहीं। वो तो उसका क्रम है, उसको कमाने का जो तरीका है उस तरीके से। अब उसमें फिर पंचम काल के दोष से या फिर इस युग की कुटिलता के कारण लोग दो रास्ते देखते हैं अपने सामने, एक तो ईमानदारी का रास्ता, दूसरा बेईमानी का रास्ता। अब बेईमानी का रास्ता थोड़ा शॉर्टकट दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में उसका परिणाम बहुत आकुलतम है। जिसने जीवन में बेईमानी की है उसका मरण बहुत आकुलता पूर्ण होता है। अभी ठीक है, जैसे तैसे आप काम चला रहे हैं किसी भी तरह से दो नंबर का ला करके, पर उसका परिणाम जो होगा वो अपने जीवन का अंत बिगाड़ देगा। अगर इस पर आपका विचार गंभीरता से हो कि अंत न बिगड़े, तो फिर सीधे रास्ते पर चलना ही श्रेयस्कर होगा। चाहे कुछ भी स्थिति क्यों नहीं, कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, आप सिर्फ अपने मन में यह विचार रखो कि मैं सीधे रास्ते से चलूंगा, क्योंकि मुझे ठीक है यहां पर जो कुछ भी मिला है सो मिला है, जो संघर्ष है वो संघर्ष है, लेकिन सबसे बड़ी चीज तो यह है कि मुझे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य, उनका उपदेश प्राप्त हुआ है। इसलिए अगर जिनको उपदेश नहीं प्राप्त हुआ वो बेईमानी कर रहे हैं, और जिनको प्राप्त हुआ वो भी अगर बेईमानी करें, तो प्राप्त करना और न करना इनमें कोई अंतर नहीं रहा, इसलिए मैं सीधे रास्ते चलूंगा। कठिनाइयों में भी पेट को किसी तरह से पाला जा सकता है, लेकिन बेईमानी से जो परिणाम निकलता है वो हमेशा अहितकारी होता है। लुईस ही ने एक जगह लिखा है कि कट थ्रोट बिजनेस जो है वो आगे चलकर के हमेशा नुकसान पहुंचाती है। माने जो दो नंबर के धंधे होते हैं उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। एक तो पहली बात तो ये है कि उससे जो पैसा आता भी है तो उसको चैन से वो भोग नहीं सकता। कितना भी संपत्तिशाली हो, अगर दो नंबर का धन है तो उसके अंदर बेचैनी बनी रहेगी, तो उसको हमेशा भय रहता है कहीं पकड़ में ना आ जाऊं, कहीं कोई दूसरी घटना ना घट जाए। इसलिए उसने मतलब कुछ नियम बताए हैं, आपको अगर धन संपन्न बनना हो तो बहुत छोटे छोटे सरल नियम है, पूरी एक सीढ़ी है उसके ऊपर, आप खूब वैभवशाली बन सकते हैं, बिल्कुल धन संपन्न बन सकते हैं, लेकिन कुछ उसके नियम है, उसका पालन करना पड़ेगा। कभी बेईमानी नहीं करेंगे, तो बेईमानी ना करने पर प्रारंभ में बहुत कठिनाई आती है, लेकिन उतनी कठिनाइयों को पार करना ही पड़ेगा। जयपुर के एक बहुत बड़े अरबपति श्रीचंद गुड़ेचा, उनसे प्रोफेसर लक्ष्मीचंद जैन ने पूछा कि आपकी संपत्ति का राज क्या है, तो उन्होंने एक सुंदर वाक्य बोला कि हम हाथ के सच्चे हैं और बात के पक्के हैं। और उन्हें ये मतलब एक दूसरों को भी चुनौती दे दी कि किसी को भी धनवान बनना हो तो मैं चैलेंज करता हूं कि इस सूत्र को वो अपना ले तो वो भी मेरे समान बन सकता है। लेकिन लोगों को शॉर्ट कट क्या कि अपनी कषाय जो होती है लोभ कषाय, वो चाहती है कि जल्दी हो जाए काम, भले बेईमानी से हो लेकिन जल्दी हो, तो यही गलत हो जाता है, कठिनाई से हो। लेकिन अब देखिए अमेरिका में अभी हमने एक बुक है हमारे पास टर्निंग नो इनटू यस, उसमें ये लिखा है कि जितने बड़े बड़े डॉलर्स अरबों डॉलर्स वाले जो धनी लोग हैं अमेरिका के, उनमें से 80% ऐसे लोग हैं जिनके मां बाप गरीब थे, या फिर 50% या 80% ऐसी कोई संख्या उन्होंने दी है कि उनके मां बाप गरीब थे लेकिन वो धनवान बन गए। कैसे बन गए? तो अपने पुरुषार्थ से, अपनी ईमानदारी से। और फिर उन्होंने लॉटरी के बारे में लिखा कि लॉटरी खरीदकर जो स्थिति बनती है लोगों की, खूब पैसा आ जाता है जीत गए तो, लेकिन 2 साल बाद उससे बदतर स्थिति होती है। उसने सर्वे करके देखा कि जितने लॉटरी से पैसा कमाने वाले लोग हैं उनकी स्थिति 2 वर्ष के पश्चात जो पहले थी उससे भी बदतर हो जाती है, क्योंकि उसने ईमानदारी से नहीं कमाया, तो उसने शॉर्टकट निकाला। तो शॉर्टकट मत निकालो, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, सीढ़ियों से ही चढ़ना पड़ता, लिफ्ट नहीं हुआ सफलता के लिए कोई लिफ्ट नहीं होती। पर फिर वही इतनी बस एक वाक्य में तो सब कुछ भरा हुआ है, पूरी धन संपत्ति का सार उसमें भरा हुआ है कि हम हाथ के सच्चे और बात के पक्के हैं, बस इतना है। इसमें आपका मरण भी सुधर सकता है। एक वयोवृद्ध सज्जन ने हमसे कहा था, क्योंकि हम बहुत वृद्ध लोगों की बातें सुनना हम बहुत पसंद करते हैं, बूढ़े पुराने जो लोग रहते हैं बुजुर्ग, उनके कुछ ऐसे अनुभव रहते हैं कि जो बाकी स्थानों पर नहीं मिलते। तो उन्होंने हमसे बरेली की बात है, भोपाल के पास एक बरेली नाम का स्थान बाड़ी बरेली, वहां पर उन्होंने कहा था कि महाराज जिसने जीवन में कपट नहीं किया है, छल नहीं किया है, उसको मौत नहीं छल सकती, यानी उसको मरते समय बेचैनी नहीं हो सकती, वो बड़े चैन से मरण को प्राप्त होता है जिसने जीवन में छल नहीं किया। पर छल की आवश्यकता भी क्या है? अगर अपना जीवन स्पष्ट सीधा है, खुली किताब है, तो फिर छल की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो अपन अपने आप को छल रहे हैं, ऐसी सांत्वना देते हैं मन को कि नहीं इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ये कहां से, किसने फैसला दिया है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा? कौन सी किताब में लिखा है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा? कौन से शास्त्र का यह वचन है कि बेईमानी के बिना पंचम काल में गाड़ी नहीं चल सकती? चलती है, और पंचम काल के अंत तक चलेगी, क्योंकि पंचम काल के अंत तक मुनि आर्य का श्रावक श्राविका रहेंगे। तो देखो, धन से अपने आप को सुखी समझने वालों के लिए आचार्य कहते हैं कि धन की कठिनाई से कमाई होती है, असुरक्षित है, और उसकी सुरक्षा भी मुश्किल है। कब तक बचाओगे आप धन को? जमीन के अंदर गाड़ोगे तो फिर वहां भी खतरा है, भूकंप आ जाए तो मुश्किल हो जाए, और अगर कोई छापा पड़ जाए तो और मुश्किल हो जाए। भूकंप में तो ऐसा है कि अगर मान लो अपनी आयु पूर्ण हो गई तो फिर ठीक है, इस जीवन संबंधी संकटों से तो बच गए, लेकिन छापा पड़ गया तो अखबार में सबसे पहले नाम छपेगा कि इसके यहां से वो निकला है। तो एक तो बदनामी का कष्ट और दूसरा फिर जो सजा मिलेगी वो अलग। तो ऐसी स्थितियां बनती है। तो असुरक्षित धन को कितनी भी सुरक्षा से आप, मान लो बैंक पर कोई डाका पड़ जाए तो भी मुसीबत है। जिस बैंक में धन है वो बैंक अगर फेल हो जाए, कभी कभी बैंक भी फेल हो जाता है तो मुश्किल हो जाती है। अभी अभी तो कहीं से कोई समाचार आया था कि हमारा जितना धन था बैंक में वो बैंक ही डूब गया, बोले तो हम तो मारे गए। असुरक्षित नश्वर, और अगर कुछ भी ना हो हर प्रकार से सुरक्षित भी रख लो धन को तो भी अंत में नष्ट होने वाला है। तो ऐसे धन आदि द्वारा जो अपने आप को सुखी समझते हैं वो उस मनुष्य के समान है जो घी से अपने आप को तंदुरुस्त समझ रहा है और है शीत ज्वर से पीड़ित। शीत ज्वर होने के कारण शरीर कमजोर पड़ गया है, जठराग्नि मंद हो गई है, लेकिन उसकी धारणा यह है कि भाई घी वाले पकवान खाने से शरीर पुष्ट होता है, ताकत बढ़ती है। तो बीमारी में जठराग्नि मंद है फिर भी वो हलवा पूड़ी मलाई सब ऐसे कोलेस्ट्रॉल वाले सामान खाता है। तो बस इसी प्रकार एक तो मोह रूपी रोग लगा हुआ है और फिर धन संपत्ति से अपने आप को सुखी मानने लग जाए तो फिर क्या दशा होगी, मोह और बढ़ेगा और फिर संसार भ्रमण करना पड़ेगा। तो धन आदि में जो संकट है वो दिखाई क्यों नहीं देता? तो आचार्य कहते हैं कि मोही प्राणी दूसरों के संकट को जितनी अच्छी तरह देखता है अपने संकट को उतने अच्छे से नहीं देख पाता। जैसे किसी जंगल में पेड़ पर चढ़ा हुआ मनुष्य देख रहा है कि जंगल में आग लग गई, उस आग की चपेट में हिरण आ रहे हैं, पक्षी आ रहे हैं और फिर दूसरे भी जंगली जानवर हिंसक प्राणी भी आ रहे हैं, वो देख देख करके गिनती लगा रहे हैं 5, 6, 7 जानवर अग्निग्रस्त हो गए, भस्मसात हो गए, लेकिन वह मोही वह मूर्ख ये नहीं सोच रहा है कि यही आग मेरे इस वृक्ष को भी जलाएगी और मैं भी इसमें जल जाऊंगा। तो इसी प्रकार धनी लोग दूसरों के संकट को देखते हैं लेकिन अपने संकट को नहीं समझ पाते। धनी लोग ये भी चाहते हैं कि समय व्यतीत हो, क्योंकि टाइम जैसे जैसे गुजरता है तो फिर जिन जिनको उनने पैसा दिया है उसका ब्याज भी बढ़ता जाता है, कर्ज दिया है जिनको तो उनका ब्याज भी बढ़ेगा। तो उनकी इच्छा क्या रहती है कि समय बीते, एक साल में इतना ब्याज हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। तो वो सोचते हैं कि एक साल जल्दी पूरा हो जाए, कब दिसंबर पूरा हो या फिर कब जो भी उनका समय हो जिस तारीख से वो साल शुरू मानते हैं वो कब दिवाली आएगी। तो फिर इस प्रकार वो इच्छा करते हैं कि समय बीते और धन बढ़े। आचार्य कहते हैं कि समय बीतता है तो धन तो बढ़ता ही है लेकिन एक दूसरी घटना और होती है, आयु घटती है। तो जो समय बिताना चाहते हैं वो आयु घटाना चाहते हैं। विचार करने की बात है, समय बिताने का मतलब क्या है? आयु का घटाना। तो जो समय बिताना चाहते हैं वो आयु घटाना चाहते हैं, और समय क्यों बिताना चाह रहे हैं? पैसे के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको अपनी आयु से भी अधिक प्रिय पैसा है। फिर वो शंका आती है कि भाई ठीक है ये सब सांसारिक बातें हो गई, अगर कोई धर्म के लिए धन अर्जित करके दान पुण्य में लगाए तो क्या बुरा है? कोई निर्धन व्यक्ति है वो खूब कमाई कर ले और फिर बाद में दान में लगा दे पैसे, पुण्य कमा ले। आचार्य कहते हैं कि कोई नहाने वाला है वो अगर कीचड़ पोत ले अपने शरीर पर तो क्या बुराई है? नहाना तो ही, तो जिस प्रकार नहाने वाला कीचड़ पोत करके नहीं नहाता, सीधे जाकर के नहाता है, उसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि तुम जो कमाई करोगे उस कमाई में जो पाप उपार्जित होगा उसको फिर बाद में तुम पुण्य कमा करके धोओगे, क्या पता वो दिन जीवन में आता है या नहीं आता। खूब पैसा कमा लिया फिर मन बदल गया, कितनी देर लगती है मन बदलने में? चुनाव जीतने के बाद ही मन बदल जाता है लोगों जीतने वालों का। तो धन कमाने के बाद मन बदल जाए, अथवा दान देने के पहले पर्याय बदल जाए, आयु पूर्ण हो जाए और दूसरी गति में चले गए, दान नहीं दे पाए। इसीलिए कहते हैं कि जिनने घोषणा की है कि हम धर्म कार्य में इतना धन प्रदान करेंगे, उनको भोजन करने के पहले वो दान दे देना चाहिए, वरना घोषणा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब तक वो घोषित धन आप देते नहीं, तब तक सुधा सागर मुनिराज ने एक प्रवचन दिया था, नरक गति नाम कर्म का आश्रय जारी रहता है निरंतर। घोषित धन, जो धर्म कार्य के लिए आपने घोषणा करके कह दिया कि ये धन मैं इतनी राशि, वो पहले दे दो, उतने समय तक नरक गति का आश्रय जारी रहता है, क्योंकि वो देव द्रव्य कहलाता है और देव द्रव्य को अपने पास रखने वाला दुर्गति का पात्र होता है। इसलिए घोषित या तो करो मत। बहुत मजा आता है जब बोली लगती है तो फिर एकदम मालाएं पहनाते हैं लोग कि देखो इन्होंने इतना दान दिया, और फिर तिलक लगाते हैं कि वाह दानवीर सेठ, खूब तारीफें होती है। लेकिन उस तारीफ में फिर दान में विलंब नहीं करना, तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है, जिसने इतना बड़ा सहयोग दिया उसकी प्रशंसा करने में क्या नुकसान है, प्रशंसा तो करनी चाहिए। लेकिन जिसकी प्रशंसा की है उसको ध्यान रखना चाहिए कि अब या तो फिर लगे हाथ दे देना चाहिए, घोषणा करते ही साथ दे देना चाहिए, अंतर्मुहूर्त से भी ज्यादा समय नहीं लगा, तो तुरंत देवगति का आश्रय चालू हो जाता है, क्योंकि आपने देव द्रव्य माने धर्म के लिए जो पैसा लगाया उसको आपने तत्काल उसमें प्रदान कर दिया। और अगर आप देर करते हैं तो देर करने का परिणाम क्या होता है, जब तक वो देव द्रव्य आपके पास, वो आपके पास रखने योग्य है क्या, पहले ये विचार करो, जो आपने घोषित कर दिया फिर क्यों रखे अपने पास, फिर अपने पास रखने का क्या प्रयोजन है जब वो आपका है ही नहीं। अब तो घोषणा करके आपने मंदिर जी के लिए कहीं प्रदान कर दिया, फिर आप क्यों रखे अपने पास, फिर देर क्यों, फिर वॉलंटियर्स लोगों को चक्कर क्यों काटने पड़ते हैं घर के कि भाई कब दे रहे हैं आप, शाम को आ जाना, शाम को अरे आज ऐसा फंसा रहा काम में कि बस तुम देखो एक काम करो रविवार को आ जाओ। वो कैसे बोलते हैं वो, तो हम तो उतना अच्छा नहीं बोल पाएंगे शायद हम तो सिर्फ सुनी सुनाई बात बता रहे हैं, लेकिन इस प्रकार टालम टोल करके, अब मान लो बीच में अगर उसका मरण हो जाए तो कौन सी गति होगी, देव द्रव्य अपने पास रखकर मरने वाला दुर्गति का ही पात्र होता है। तो क्यों ऐसी मूर्खता, स्वयं जानबूझकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारी जाए, खुद क्यों नरक जाना, तो जल्दी से जल्दी वो देव द्रव्य दे देना चाहिए। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि अगर दान पुण्य के लिए तुम अभी पैसे नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन पैसे कमाने कमाओगे और बाद में दान पुण्य करोगे, तो बोले बाद का कोई भरोसा नहीं है, अभी जितना करते हो, दो रोटी खाते हो तो उसमें से एक ग्रास दान में दे दो, कितना कितना भी कैसा भी व्यक्ति हो दान करने में कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसकी जितनी क्षमता है उतना दान कर सकता है। एक माजी की कथा आती है, हमने शायद यहां सुनाई कि नहीं पता नहीं, एक महीने का उपवास करके कोई गुरु आहारचर्या के लिए आए और उस समय वो माजी बहुत आकुलित थी, सबके घर जा जा करके बोलती थी कि भैया सावधानी से देना, महीने भर का उपवास है और एक एक चीज शोध करके देना, बोले सब जगह जा जा करके बोल रही थी, लोग सोच रहे थे कि और ये बुढ़िया बहुत वृद्ध हो गई है इसलिए ये हम लोगों को समझा रही है, बूढ़े पुराने लोग हमेशा समझाते ही रहते हैं दूसरों को, तो ऐसे करके उसकी बात को टाल रहे थे। और इसी बीच वो मुनिराज आ गए और कई लोग पड़गान के लिए खड़े थे, क्योंकि मासोपवासी रिद्धिधारी साधु का आहार अपने यहां हो जाए कितना बड़ा सौभाग्य है। तो फिर वो बुढ़िया भी बेचारी चुपचाप अपनी कुटिया के पास खड़ी थी, उसको ये लग रहा था कि कहीं मेरी दशा को देखकर, मेरी वृद्धावस्था को देखकर महाराज अंतराय न कर दे, हो सकता है साधु बड़े करुणावान होते हैं और उनको मुझे देख करके इतनी करुणा आ गई तो फिर उनका मन ही हट जाए आहार से, वापस चले जाए। तो फिर वो ऐसे पीछे खड़ी थी अपनी कुटिया के पास और बाकी सब लोग पड़गान कर रहे थे सामने। तो पूरे शहर में साधु ने जब भ्रमण किया आहारचर्या के लिए तो कहीं भी उनका संकल्प, उनकी विधि नहीं बनी, उनका वृत्ति परिसंख्यान नहीं मिला। तो फिर महाराज वापस उस तरफ जाने लगे जंगल की तरफ। महीने भर का उपवास, सब लोग बहुत आकुलित हुए, कलश बदल रहे हैं, फल बदल रहे हैं, कितने प्रकार से लोग आपस में एक दूसरे को ये कर रहे हैं कि तुम पीछे हट जाओ, तुम आगे आ जाओ, तुम आ जाओ। फिर जो अंदर थे चौके में उनको भी बुला रहे हैं कि तुम आ जाओ, खड़े हो जाओ, शायद महाराज जी आ जाएं। लेकिन महाराज कहीं नहीं गए। फिर जब वो लौट रहे थे तो फिर उस कुटिया की तरफ उनकी दृष्टि गई, तो वहां पर वो बुढ़िया ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ी हुई थी, तो बहुत दुखी थी वो कि महाराज श्री का कहीं पड़गाम नहीं हुआ। महाराज श्री वहीं आकर के खड़े हो गए। अब जब महाराज श्री वहां खड़े हो गए तो फिर लोगों को लगा कि इसके यहां खड़े हो गए गुरु, अब इसके खुद के खाने की तो व्यवस्था नहीं है, क्या खिलाएगी गुरु को। तो फिर बुढ़िया ने तो फिर नमस्कार किया, महाराज श्री नमस्तु नमस्तु नमस्तु। फिर उसको ये भी एहसास हुआ कि महाराज श्री तो मेरे यहां मतलब मुझे पड़गाहन करता समझ करके खड़े हुए हैं। तो फिर उसने विधिवत पड़गाहन किया, अंदर लाई, और अंदर जैसे अकृत पुण्य की माँ जाए कुछ ऐसे पटिए ईंटे वगैरह लगा करके महाराज श्री की नवदा भक्ति की थी, वैसे ही उसने भी एक छोटा सा पटिया था, उस पर महाराज श्री को बैठा लिया। और फिर अब क्या था उसके पास चढ़ाने के लिए, तो शुद्ध प्रासुक जल था। तो फिर जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय मुनीन्द्राय जलम निर्वपामी दी करके तीन धार जल की चढ़ा दी उसने, पूजा हो गई। और फिर घर में क्या था, एक पात्र में मेथी, मेथी दाना होता ना, वो उबले हुए मेथी दाना रखे हुए थे, तो मेथी दाना को भी नैवेद्यम निर्वपामी थी करके चढ़ा दिया उसने। और कुछ भी नहीं, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, दिए के लिए घी भी नहीं था, ऐसी स्थिति थी। लेकिन फिर भी शुद्ध जैन थी और फिर विधिवत अपनी चर्या पालन करती थी। गुरु महाराज ने बिल्कुल ऐसा कुछ आग्रह दुराग्रह या ऐसा कोई भाव नहीं रखा कि इसने आठ द्रव्य क्यों नहीं चढ़ाया, अब मैं लौट जाऊं। नहीं, साधु समझते हैं कि कहां क्या प्रसंग है और कैसी स्थिति है, तो बहुत अच्छी तरह से उनने उनके यहां खड़े होकर के उसने मेथी दाने के, वो जितना था उसके पास मेथी दाने, वो आहार दिया। और फिर मुनिराज ने उसका बड़े शांति भाव, शांत भाव से सेवन कर लिया। और उसके बाद वहां पर पंचाश्चर्य भी हो गए। और साधु जब लौट करके चले गए वन की तरफ, तो फिर लोगों ने आश्चर्यचकित होकर के सोचा कि साधु के आहार हो गए, और क्या आहार में क्या दिया। पूछा उससे कि माँ जी तुमने क्या दिया, बोले मेथी दाना। तो फिर बोले कि मेथी दाना, मेथी दाना महाराज को दिया, बोले आहार, सिर्फ मेथी दाना, बोले गर्म पानी भी दिया, बोले तो वो तो ठीक है, गर्म पानी तो दिया ही, बोले मेथी दाना और गर्म पानी, ऐसे में कैसे होगा। तो फिर कुछ लोग जो मतलब क्या होता है कि अलग अलग मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, एक व्यक्ति बोला कि महाराज श्री को मेथी दाना की सब्जी पसंद होगी। तो फिर उसके बाद जब भी महाराज आहार को आते थे तो हर चौके में मेथी दाना, लेकिन कहीं भी पंचाश्चर्य नहीं हुए। पंचाश्चर्य उस बूढ़ी मां के यहां हुए, क्यों, क्योंकि उसके यहां सहज नवदा भक्ति के साथ वो शुद्ध प्रासुक आहार गुरु को दिया गया था। तो ऐसी स्थिति भी बनती है। तो कभी भी देव द्रव्य अपने पास नहीं रखना चाहिए, जो भी दान घोषित किया है वो दे देना चाहिए। और दान छोटे से छोटा व्यक्ति भी कर सकता है, जैसे अभी ये जो दृष्टांत था कितना सुंदर दृष्टांत था, इसको अगर और विस्तार से सुनाया तो फिर आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, पर अभी भी हृदय तो बिल्कुल गदगद हो जाता है। ऐसी घटना थी। तो अभी आज तो अपन ने इसको एक प्रकार से दोहराया है, फिर इसके आगे का स्वाध्याय आगे देखेंगे।